जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। शरीर के वेगों की बात चल रही है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीका में, और हमारे प्रसाद लेने के पहले जो प्रार्थना हम बोलते हैं उसकी चर्चा अब श्रील भक्ति सिद्धांत करने वाले हैं। कौन पढ़ेंगे अभी? मधुकांत प्रभु पढ़ोगे? शरीर विद्या जल से शुरू। तो इस प्रार्थना का अर्थ तो हम सब जानते हैं, है ना? तो इसका तात्पर्य ये है कि कृष्ण प्रसाद का सेवन करने से तीनों जो शरीर के वेग हैं उनको हम वश में कर सकते हैं। तो शरीर अविद्या जाल, इस प्रार्थना को कौन समझाएंगे? शब्द भेद करके शब्दार्थ उत्पल शरीर अविद्या जाल, हर एक शब्द के साथ समझाओ। शरीर अविद्या जाल इसका क्या मतलब? ऐसे हर एक चीज को पूरा तात्पर्य क्या है इसका? बंगला है, जानते हो ना? राजू, हाँ, शरीर अविद्या को शरीर अविद्या जाल, इसका ये प्रार्थना का मतलब क्या है? अभी हम तात्पर्य पढ़े ना, उसका मतलब पढ़े ना। अनंत पद्मनाभ प्रभु, अविद्या का पिंड है, हाँ, और आगे लाइन बाय लाइन बोलते जाओ। शरीर अविद्या जाल, फिर हाँ, क्या है जड़ेन्द्रिया? हाँ हाँ, अनुवाद देखो क्या लिखा है प्रभुपाद ने, इसका क्या मतलब है?
तो
और कहाँ ले जाते हैं जीव को? आगे पढ़ो, उसको समझाओ, पूरा प्रार्थना को समझाओ आप। यहाँ जीव है मतलब जीव, आत्मा, आत्मा की बात। जीव है मतलब आत्मा को, फैले मतलब फेंकते हैं, कहाँ? विषय सागर में, भौतिक जगत में फेंकते हैं। ये इंद्रियां हैं, ये शरीर क्या है? शरीर नहीं, अविद्या का पिंड है। शरीर अविद्या का पिंड है और इंद्रियां क्या है? वो जाल है जो कि जीव को क्या करती है? मृत्यु सागर में, विषय सागर में उन्हें फेंक देती है। फिर आगे तार मध्य, तार मध्य जिह्वाति मतलब इंद्रियों के बीच में, इंद्रियों में से जो जीव है उसके लिए क्या, कैसे है, क्या वर्णन है, शब्दार्थ देखे। हाँ, क्या मतलब इसका? लोभमय, लोभमय मतलब मोह, बहुत लोभी है। सुदुर्मति, दुर्मति हमेशा गलत कार्य करने वाले, जो नियंत्रण में नहीं है। तार मध्य जिह्वाति लोभोमय सुदुर्मति, फिर क्या मतलब? किसको वश में करना? जिह्वा को या जीभ को वश में करना बहुत कठिन है। फिर कृष्ण बहुत दयामय है। और स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, ये स्वप्रसाद अन्न जो है किसने दिया है? कृष्ण ने। और क्या करना चाहिए इसका? चाहिए अन्नामृत पाओ, इस अन्नामृत को हमें आस्वादन करना चाहिए। और आस्वादन करते समय राधा कृष्ण गुण गाओ। और क्या करना चाहिए? डाको मतलब पुकारना है? तो प्रेम से पुकारना चाहिए। ये तो रोज की प्रार्थना है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रेमदेव प्रभु, अभी समझाओ ये प्रार्थना क्या है। शरीर अविद्या जाल, बहुत अच्छा। तो ये कृष्ण प्रसाद, इसलिए प्रसाद शब्द जो है इसका मतलब क्या है? कृपा। तो ये भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने हमें ऐसा एक माध्यम दिया है जिससे हम हमारे समस्त इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। विशेष करके जो शरीर के वेग हैं, कौन से हैं शरीर के वेग? हाँ, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ठीक है। ये तीनों केवल प्रसाद लेने मात्र से वश में आ जाते हैं। तो अभी जिह्वा वेग के बारे में और विशेष करके हमारे स्वाद आदि के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चर्चा करने वाले हैं। तो अर्थात दोनों जिह्वा वेग और उदर वेग दोनों की चर्चा आप करने वाले हैं। हाँ, कौन पढ़ो? मधुकांत प्रभु। हाँ, ये फिर से पढ़ना जरा, सब लोग ध्यान से सुनिए। मतलब लेना चाहिए नहीं? हाँ, नहीं लेना। अच्छा, ठीक। अच्छा, फिर आगे लिए। हाँ, फिर से पढ़िए जरा, ठीक से सुना नहीं हमने, ठीक से पढ़िए। शायद सभी लोग सुन नहीं पाए हैं, तो तीन चार बार अलग अलग भक्त इसको पढ़ें। हाँ, यहाँ से शुरू करके श्रीकांत सेन, यहाँ से थोड़ा पढ़ो। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं, एक ही वाक्य ठीक से नहीं आ रहा है सुनने में। अर्थात इसका मतलब समझाओ। भोजन यहाँ क्या बोल रहे हैं इस वाक्य में?
स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह इस जीव के वेग को शुष्क करने का
मतलब क्या?
स्वादिष्ट के कारण प्रसाद ग्रहण करता है।
यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, जो उपर्युक्त बताए हुए जो भोजन आदि हैं वो तो नहीं लेने चाहिए, केवल प्रसाद लेना चाहिए। फिर भी केवल प्रसाद लेने के बाद भी क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ 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 केवल ये स्वादिष्ट है इसके लिए खाना अधिक मात्रा में, भले वो प्रसाद क्यों न हो। हम केवल कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रसाद भी केवल स्वादिष्ट है इसलिए खा रहे हैं, तो फिर भी हम जीभ के वेग के शिकार हो जाते हैं। एक मंदिर में ये घटना आपको बताई होगी एक बार, कि एक मंदिर में कई साल पहले ऑल्टर रूम से खीर का जो महाप्रसाद है वो चोरी होता था रोज, केवल खीर। और बहुत कोशिश की भक्तों ने हरे कृष्ण ढूंढने के लिए कि कौन भक्त है जो चोरी कर रहा है, भक्ति तो है ना, तो कोई नहीं हो सकता, कैसे जा रहा है स्वीट राइस यहाँ से। फिर उन्होंने ऑल्टर रूम को ताला मारने का ताल मार के रखा, फिर भी चोरी हो रहा था। फिर उसे कहीं अंदर वो कबर्ड के अंदर वगैरह रखा, जो भी किया लेकिन वो चोरी होके जा रहा था। अंततः वो भक्त पकड़ा गया, भक्ति था। फिर भक्त को पूछा तो सारे मंदिर में ये फैल गया, कौन है ये, कौन है ये, बड़ा सस्पेंस हो गया। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे, ये होगा ये होगा ये होगा, कौन है वो जो कर रहा है। आखिर पकड़ा गया तो फिर मंदिर के अध्यक्ष के सामने लाया गया, तुम क्यों चोरी करते हो बार बार, बांटना चाहिए ना सबको, अकेले क्यों लेते हो, इसमें मेरा दोष क्या है, मैं तो कृष्ण प्रसाद ही ले रहा हूं ना, तो कृष्ण प्रसाद लेने में क्या दोष है। उन्होंने कहा कोई दोष नहीं, लेकिन तुम महाप्रसाद दाल कभी क्यों नहीं ले जाते, कभी कभी महाप्रसाद की सब्जी क्यों नहीं ले जाते, केवल महाप्रसाद का खीर ही हर बार क्यों ले जाते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तुम ये प्रसाद है इसलिए नहीं चोरी कर रहे हो, तुम इसे इसलिए चोरी कर रहे हो कि ये स्वादिष्ट है, तुम्हारे जिह्वा को वो अच्छा लगता है और इस स्वाद के कारण तुम चोरी कर रहे हो। तो तुम्हारी दृष्टि ये नहीं है कि ये प्रसाद है, तुम्हारी दृष्टि क्या है, मेरे जीव के वेग को मैं तुष्ट करने के लिए मुझे ये चाहिए। तो इसका क्या मतलब रहा कि भले कोई चीज महाप्रसाद भी क्यों न हो, परंतु केवल स्वाद के लिए अधिक मात्रा में खाना ये भी जीभ के वेग के शिकार होने का कारण होता है। ठीक है ना? हाँ? कौन बताएंगे इस बात को? रामभद्र प्रिय प्रभु, ये क्या है बात बताओ जरा इसी बात को। और कौन बताए? उद्धवानंद प्रभु, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, केवल स्वादिष्ट है इसलिए, है ना। कई मंदिरों में क्या करते हैं, जब महाप्रसाद होता है ना, सारा मिक्स कर दे सब कुछ मिक्स कर लेते हैं, ताकि जिसको जितना मिला, जो भी मिला, उसके भाग्य में जो लिखा है, जो हाथ में आया, बांटने वाला है बांट रहा है, जो उसको मिला वो। कभी कभी वृंदावन में भक्त लोग इतने झगड़ा करने आते थे पुजारियों से, ये फेस्टिवल गोवर्धन पूजा मुझे नहीं मिला, उनको मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे केक ही ले जाना है, कोई कहता है नहीं मुझे वही ले जाना है, मुझे कुकीज ही चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो दृष्टि क्या है? महाप्रसाद की नहीं है। अगर महाप्रसाद की होती तो कोई भी जो मिलता है वो लेकर जाते, यही क्यों? क्योंकि ये स्वादिष्ट है। तो महाप्रसाद की दृष्टि से देखना चाहिए, केवल स्वाद की दृष्टि से नहीं। हाँ आगे पढ़िए, और आगे चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं इसके बारे में। नहीं नहीं उसके पहले वाक्य फिर से पढ़िए। नहीं नहीं वो वाक्य अंतिम वाक्य
ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अच्छा निग्रह और स्वादिष्ट व्यंजन आर्जित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में सफल होते हैं।
इसका मतलब कौन समझाएंगे उत्तम श्लोक प्रभु। हाँ क्यों ऐसे, क्यों इसमें गलती दोष क्या है। हाँ न कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जब भगवान की सेवा की जाती है भले आरती हो या भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा हो या भगवान को श्रृंगार किया जा रहा हो तो हमारी मनोभावना क्या होनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, ये भावना होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति श्रृंगार करता है भगवान के सुंदर श्री मूर्ति का इस दृष्टि से कि ये श्रृंगार को देख के सभी कहेगा अरे वाह किसने श्रृंगार किया, कौन है, कितना श्रेष्ठ है। यदि नहीं क्यों अकेले क्यों ऐसे हाथ करते हो। अच्छा ये हम जनरल बात बोल रहे हैं, किसी के बारे ऐसे नहीं बोला हमने। तो या तो कोई व्यक्ति कीर्तन करता है इसके लिए कि सब लोग देखें कि मैं कितना सुंदर गाता हूँ, कितना मधुर है, मेरी ध्वनि कितनी अच्छी है। तो उसी प्रकार से कोई भगवान को भोग चढ़ाता है या पकाता है लेकिन किस दृष्टि से कि जल्दी जल्दी ऑफरिंग हो जाए और मुझे मिले। तो उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो जाए, कि भगवान संतुष्ट हो इस अच्छे भोग से। उद्देश्य क्या है कि मुझे ये स्वादिष्ट भोजन खाना है, इसलिए ये भी जीव के वेग का शिकार हो जाता है। ठीक है तो देखिए पहले हम अमुक चर्चा करते समय एक वाक्य पढ़े थे, कौन सा था वो जिसके ऊपर कई बार कई क्लास चर्चा हुई, क्या था वो वाक्य। हाँ कृष्ण भावनामृत, पूरा बहुत अच्छा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। ये इतनी सूक्ष्म बात है परंतु इतनी महत्वपूर्ण बात है। हर चीज हमारे मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये सारी चीजें आप देखिए ये केवल मनोवृत्ति की बातें हैं, है ना। हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा कोई केवल बाह्य कार्य नहीं है, हालांकि बाह्य कार्य के बिना सेवा हो भी नहीं सकता। भोग बनाना है या श्रृंगार करना है या कीर्तन करना है तो हम केवल सोच के नहीं कर सकते, हमें करेंगे नहीं करना है प्रत्यक्ष रूप से भी। परंतु उस बाह्य कार्य के साथ साथ हमारी भावना समुचित होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, सही है ना। हाँ आगे आगे पढ़िए।
यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करते हैं कि वहाँ स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा,
अरे वो तो
हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
हाँ चाहे भी जाए किसी धनी व्यक्ति के घर जाए
یا کسی کانگریگیشن ڈیووٹی کے گھر میں جائیں کہ ان کے گھر میں بہت بڑھیا پرساد ملے گا، یا چپکے سے اپنے ہی گھر میں چلے جائیں، اپنے ماتا کے ہاتھ سے کچھ کھائے، ہے نا؟ بچپن میں ہماری ماں بہت اچھا بناتی تھی، اب وہ ہم جا کے کھائیں گے، جو بھی ہو، تو یہ جیب کے ویگ کا شکار ہو جاتا ہے وہ ویکتی. اس کو چارٹ کو ذرا گھمائیے. ہاں، تو جیب کے ویگ کے بارے میں چرچا ہے. جیب کا ویگ، ایک ہم جیب سے دو چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں. ایک ہے اندریوں کو ترپت کرنے کے لیے بھوجن کرنا، چاہے وہ ماساہاری ہو یا شاکاہاری ہو. دونوں باتیں پربھوپا جی کہتے ہیں یہاں پر، ہے نا؟ ایسا نہیں کہتے ہیں کہ کیول ماساہاری خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاک دودھ آدی لینا یدی وہ کرشن پرساد نہیں ہے، اور یدی وہ کیول ہماری اندری ترپتی کے لیے ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اندریوں کو ترپت کرنے کے لیے بھوجن کرنا، چاہے وہ ماساہاری ہو یا شاکاہاری، یہ ورجت ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم لوگ کیول ویجیٹیرین نہیں ہیں، نان ویج تو نہیں کھاتے، لیکن ویجیٹیرین بھی نہیں ہیں ہم لوگ. ہم لوگ کیا ہے؟ پرسادیٹیرین، ہے نا؟ کیول پرساد لیتے ہیں، اور پرساد تو نان ویج ہو ہی نہیں سکتا. تو شاکاہاری ہے لیکن بھگوان کو ارپن کیا ہوا. اور پھر دوسرے پرکار کا بھوجن وہ ہے جو کیول کرشن کو پرساد، کرشن کو بھوگ ارپن کر کے پھر وہ پرساد کے روپ میں سویکار کرنا. اور کرشن پرساد کے سیون کے بھی دو پرکار ہوتے ہیں. پہلا ہے کیول سواد کے لیے سویکار کرنا، ادھک ماترا میں سویکار کرنا، یہ ورجت ہے. اور جیب کا ویگ نینترت کیا جا سکتا ہے، کس سے؟ سنتولت ماترا میں صحیح بھاگ سے کرشن پرساد کا سیون کرنے سے. سنتولت ماترا مطلب جو آوشک ہے. یدی کسی کے پاس بھیم کا شریر ہے تو بھیم جیسے لینا چاہیے پرساد، لیکن یدی شریر سدھاما وپر جیسا ہے تو پھر بھیم جیسا پرساد نہیں لینا چاہیے. جتنا ہمیں ہمارے شریر کو بنائے رکھنے کے لیے چاہیے، جتنا ہمیں ہماری سیوا کرنے کے لیے آوشک ہے، اتنا ہی لینا چاہیے، بس زیادہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے جو لکھنا چاہتے ہیں یہ لکھ لیجئے. یا جیب کا ویگ کے بجائے لکھ سکتے ہیں جیب کا پریوگ. ہاں لیکن وہ پان وان کے ساتھ میں کھاتے ہیں، کیول دوائی روپ میں ٹھیک ہے، لیکن کیول وہ زیادہ لے کے چباتے رہتے ہیں، وہ بھی مسالہ سپاری جیسے ہے، وہ تو الگ سے کھانے میں تھوڑا ورجت ہے. حالانکہ کبھی کبھی بھکت لوگ لیتے ہیں وہ پچن آدی کے لیے، پچن کے لیے ہری تکی بہت اچھا لگتا ہوتا ہے. ویسے کہہ رہے ہیں پربھوپا جی نہیں لینا ہے. اچھا، تھوڑا نشیلا وہ گن ہوتا ہے اس میں. جتنے بھی چیزیں ہیں سب نشے کے پدارتھ ہیں. ہاں، ایسا کھا لیتے ہیں. Thank you. کئی ایسی چیزیں ہیں جن جو جیسے چائے کافی میں بھی نشیلے پدارتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ نہیں لیتے ہیں. تو اب یہ سمجھائیے جیب کے ویک کے بارے میں، کون سمجھائیں گے؟ کتنے پرکار کے رس ہوتے ہیں؟ چھ پرکار کے. کسی کو پتا ہے کون سے چھ پرکار؟ کھٹا میٹھا تو سبھی کو بھاوا ہے اور تیکھا، کٹو، کڑوا، تیکھن، کٹو، آمل، مدھو، اور وہ کیا ہے آیوروید، کون ہے کوئی ویدیہ ہے کیا ادھر؟ پھر اور کچھ ہے اس کا، سنسکرت میں نام بھول گیا ابھی، تیکھن، تیکھن، تیکھن مطلب تیکھا، آمل مطلب کھٹا، ویسے طرح طرح کے سواد ہوتے ہیں. ہاں تو ابھی اس چارٹ کو کون سمجھائیں گے؟ آشرے گووند. उचित मात्रा में और सही भाव से ठीक है. बहुत अच्छा. तो ये है कृष्ण प्रसाद के बारे में और आगे जिह्वा के बारे में चैतन्य चरितामृत में क्या बताया गया है. हाँ आगे पढ़िए. श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस श्लोक को हम सब कंठस्थ करें. कितने भक्तों को ये श्लोक पहले से ही कंठस्थ है, हाथ ऊपर कीजिए. बहुत अच्छा. तो जिनको नहीं है वो कंठस्थ करना है. कब तक? प्रसाद लेने तक या कल तक? ठीक है. तो इस प्रकार से हाँ और आगे पढ़िए. ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی جیہ کی باتیں. تو مہاپربھو کے آدیش دیتے ہیں ہم سب کے لیے کس سے ہمیں بچنا چاہیے. اتی اتی دھائے مطلب کیا؟ دھائے دھائے کیا ہے؟ धाव, मराठी में धाव कहते हैं ना, धाव तो धावत पड़त, धाय इति उति मतलब इधर उधर, जिह्वार लालसे मतलब जीव के लालसा के लिए, जीव के लोभ के कारण जो इधर उधर भागता है, क्या होता है वो, शिष्णोदर परायण। शिष्णोदर मतलब शिष्ण और उदर, शिष्ण मतलब जननेन्द्रिय, तो जननेन्द्रिय और उदर के वश में आ जाता है और फिर कृष्ण को पा सकता है नहीं, कृष्ण नहीं पाए। और फिर कौन सी महत्वपूर्ण बात बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे, मुकुंद रघुनाथ प्रभु, जननेन्द्रिय उदर और जिह्वा क्या है, नहीं वो एक ही रेखा में है, इसलिए जीभ को वश में करने से उदर और जननेन्द्रिय खुद ही नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो ठीक, क्या समय हुआ अभी, ठीक है, तो यहीं पे आज विश्राम देते हैं। अच्छा, आपसे निवेदन है कि अभी हम आश्रम के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रखना चाहते हैं, जितने भी हमारे आश्रम के ब्रह्मचारी हैं उनकी सारी जानकारी, फोटो वगैरह सब अच्छी तरह से फाइल करना, तो कभी कभी ये नहीं रहता कौन है, कौन थे पहले, सारा रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए।